भाई हर साथी अपने आगे की जगह देख ले। देखो आगे जितना बढ़ने का हो उतना आगे बढ़ जाए, जितना मिल मिल करके बैठेंगे वो अपने नफे की क्रिया। माशाल्लाह देखो ऊपर मस्त तक में आगे, माशाल्लाह और आगे बढ़ जाए, बैठे बैठे चाहे आगे बढ़ जाए, आगे की जगह पूर करो, आगे की जगह पूर। देखो दीन की बात को तलब के साथ और इसी तरह आदत के साथ में सुनेंगे तो इंशाल्लाह इसके असर और होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह देखो पूरा मजमा हरकत में आ गया, पूरा मजमा हरकत में आ गया और आगे पीछे जो हजरात है वो भी आगे बढ़
जाओ।
सूरज होता है ना सूरज, तो उसके कई नफे होते हैं। एक उसकी हरारत है और फिर उसकी रोशनी है, इसी तरह आग है तो आग के लिए रोशनी है, उसकी हरारत है। दूर से आदमी को रोशनी आएगी लेकिन हरारत नहीं होगी, हरारत गर्मी, गर्मी के लिए आदमी को नजदीक आना पड़ेगा। इसी तरीके से जो है दीन की बात के अंदर भी ये सारी चीजें मतलूब है, हरारत भी मतलूब है, रोशनी भी मतलूब है, हरकत भी मतलूब है, ये सारी चीजें मतलूब है। देखो अब ज्यादातर मजमा जुड़ गया और थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, देखो पीछे जो मजमा है वो थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह देखो कितना मुबारक मजमा है, बात कान में पड़ते ही फौरन हरकत में आ गई माशाल्लाह। हाँ मतलब ये रस्सी के पीछे वाले हिस्से में जो जगह खाली उसमें, ये जो आगे जगह है उसमें जमात में जाने वाले हजरात है माशाल्लाह। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. देखो मेरे भाइयों, इस वक्त में दो तरह का मजमा है। कुछ हजरात वो है जो अल्लाह के रास्ते में जाने वाले हैं, कुछ हजरात वो है जो अपने घरों को वापस जाएंगे। लेकिन अभी इस वक्त में जो सामने बातें आएगी वो दोनों के मजमे के लिहाज से आएगी, इसलिए कि हमारा काम एक ही है और हर जगह करने का है, इसलिए पूरा मजमा ध्यान तवज्जो के साथ में सुने कि जो बातें हमको कही जाएगी उसके ऊपर हम अपनी मौत तक अमल करेंगे। ठीक है भाई इंशाल्लाह। इसलिए कि दीन का नफा उस वक्त में होता है जब वो जिंदगी में आए, दीन की बात का नफा उस वक्त में जाहिर होगा जब वो जिंदगी में आए। गोली मुंह के रास्ते से पेट में पहुंचाएंगे तो अल्लाह की कुदसी ताकत का मुजाहरा होता है और फिर जिस्म के जिस जिस उज्व में दर्द होता है वो दर्द दूर होना शुरू होता है। इसी तरीके से दीन की बात है कि जब दीन की बात जिस अमल से मुतालिक है वो वहां पहुंचेगी तो फिर उसके रास्ते से उसका जो असर है वो जिंदगी पर जाहिर होगा। इसके लिए जो बातें हमारे सामने आए अमल की नियत से सुनना है और मौत तक इसको पल्ले बांध के लेके जाना है। ठीक है भाई इंशाल्लाह। ये बात नहीं होनी चाहिए कि भाई कहाँ गए थे, कहीं नहीं और क्या लाए, कुछ भी नहीं। यहाँ आए है तो यहाँ का काम लेकर के जाए, यहाँ आए है काम लेने के लिए आए और पूरी दुनिया में करना है, तो इसके लिए यहां से इस काम को लेकर के जाना है कि भाई जाएंगे इंशाल्लाह। देखो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज पूरी दुनिया हालात का रोना रो रही है, पूरी दुनिया किसी के पास में भी आप जाओ, हर कोई अपना दुखड़ा सुनाएगा, हर आदमी अपने हालात सुनाएगा। और ये बात भी है कि हर आदमी हालात से निकलना भी चाहता है और निकलने के लिए कोशिश भी करता है। आपको दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो हालात से निकलने के लिए मेहनत न कर रहा हो, हालात से निकलने की मेहनत भी कर रहा है। और ये बात भी मुशाहद है, नजर आ रही है कि जितनी मेहनत कर रहा है उतना और फंसता जा रहा है। बात आ रही समझ? ये आप अगर पूरी दुनिया पर नजर डालेंगे ये बात आपको अच्छी तरह नजर आएगी। और ये पक्की ठक्की बात है कि आज हालात से निकलने के लिए जिस रास्ते से वो मेहनत कर रहे हैं, कयामत की सुबह तो हो सकती है मगर वो हालात से नहीं निकल सकते। क्यों? इसलिए कि हालात से निकलने का जो कुरान और हदीस ने जो रास्ता बताया है वो रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से अपने हालात बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी मिसाल तो ऐसी है जैसे एक आदमी दलदल में फंस गया, एक आदमी दलदल में फंस गया। अब उस दलदल से निकलने के लिए जो है कोशिश कर रहा है। हम सब जानते हैं कि जो आदमी दलदल में गिर गया, फंस गया, अब उसे निकलने के लिए जितने हाथ पैर ज्यादा मारेगा इतना ज्यादा फंसता जाए। क्यों है ऐसा ही है ना? जितना हाथ पैर ज्यादा मारेगा उतना ज्यादा फंसेगा। उसको हाला उस दलदल से निकलने के लिए एक ही रास्ता है। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता ये है कि बाहर से कोई रस्सी फेंके, बाहर से कोई रस्सी फेंके और वो उस रस्सी को पकड़ ले। बस उस रस्सी को अगर उसने पकड़ ली तो फिर ये दलदल से निकल सकता है। इसके अलावा उस दलदल से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है। ठीक इसी तरीके से मेरे भाई और दोस्त बुजुर्गों, पूरी दुनिया दलदल की तरह है। और आज पूरी दुनिया जो जिस शोबे में है वो दलदल में हाथ पैर मार रहे और ज्यादा फंसते जा रहे। उस दलदल से निकलने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी इंसानियत के लिए आसमान से एक रस्सी उतारी। अगर ये इंसानियत कसे बाशत, पूरी इंसानियत, इसलिए कि सारे इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया है, सारी मखलूक अल्लाह के कुंबा और आयाल है, पूरी इंसानियत जो भी इस दलदल से निकलना चाहता है उस दलदल से निकलने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से वो रस्सी उतारी है। वो रस्सी अगर पकड़ ली तो दलदल से और हालात से आदमी निकल सकता है, और अगर ये रस्सी न पकड़ी तो कयामत की सुबह और जिंदगी का सूरज डूब जाएगा मगर वो दलदल से नहीं निकल सकता। और वो रस्सी क्या है? واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا। अल्लाह ने आसमान से वो रस्सी जो उतारी है वो कुरान की शक्ल में, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की शक्ल में ये जो उतारी है, फरमाया जो इसके पीछे पीछे चलेगा और जो इसको मजबूती से पकड़ लेगा, फरमाया वो घरेलू लाइन के हालात से भी निकल जाएगा, कारोबारी हालात से भी निकल जाएगा, सामाजिक हालात और दलदल से भी निकल जाएगा, हुकूमत के हालात से भी निकल जाएगा, मुल्क के दलदल से भी निकल सकता है। इसके अलावा जितनी कोशिशें होगी, फरमाया दलदल में फंस तो सकता है निकल नहीं सकता। और ये रस्सी इतनी मजबूत है कि दुनिया में जितने इंसान है, दुनिया की चार सिमतों में ये सारे के सारे मिलकर भी अगर ये पकड़ ले तो फरमाया ये रस्सी टूटेगी नहीं। हाँ ये हो सकता है कि हाथ से छूट जाए, इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए। आजु अलीहा बिन नवाजिज, फरमाया दातू से कस के इसको मजबूती से पकड़ना। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में खास तौर से ईमान वालों को खिताब करके एक बात ये कही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस सिल्मी काफ्फा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। انہو لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اے میرے پیارو، اللہ رب العزت نے اس آیت میں تمام ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، اور ایک بات یہ سمجھائی ہے کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام سے خطاب کیا ہے اس بات کا کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ پورے دین پر چلنے پر پورا نفع ظاہر ہوگا. ادھورے دین سے تو جو ہے پریشانی آتی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ادھوری چیز سے تو پریشانی آتی ہے. آدمی کے پاس میں 10 لاکھ کی گاڑی ہے، لیکن اس کا ایک ٹائر پنچر ہے کہ وہ منزل تک پہنچے گا. آدمی کے پاس میں 10,000 کی گاڑی ہے، اس کی 2 سوئیاں ہی نہیں ہے، تو بتاؤ یہ وقت دے گی؟ حالانکہ ساری چیزیں ہیں، تھوڑی کمی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو سے مطالبہ اور خطاب کیا ہے کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب کے سب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے، تو پھر اس اسلام کے راستے سے ان کے جتنے دنیاوی اخروی جتنے ملکی ملی قومی انفرادی اجتماعی جتنے مسائل ہیں، اللہ رب العزت ان تمام مسائل کو حل فرمائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری جتنی چاہتے ہیں ان تمام چاہتوں کے وعدے فرمائے. ہماری چاہت ہے دل کا سکون اور چین، اللہ نے اس کا بھی اسی پر وعدہ فرمایا. ہماری چاہت ہے روزیوں میں برکت، اس کا وعدہ بھی اس پر فرمایا. عزت، اس کا وعدہ بھی اس میں فرمایا. مودت، محبت، اس کا وعدہ بھی اس میں فرمایا. دنیا کی زندگی چھوڑ کر آخرت میں جانا ہے، آخرت کی زندگی جو کروڑ ہاں کروڑ سال کبھی نہ ختم ہونے والی ابدی زندگی، اس زندگی کے مسائل کا حل اللہ نے وہ بھی اس میں رکھا ہے. ہمارے تمام دنیاوی اخروی اور جتنے انفرادی اجتماعی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا حل دین اسلام میں، اور دین اسلام کامل اور مکمل میری اپنی زندگی میں آ جائے، میرے اپنے گھرانے میں آ جائے، میرے محلے میں آ جائے، میری بستی میں آ جائے، میرے اپنے ملک میں آ جائے، اور پورے عالم میں جتنی امت مسلمہ ہیں وہ پوری امت مسلمہ کے اندر آ جائے، اور امت مسلمہ کے راستے سے پورے انسانیت میں آ جائے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ایک ایسی آسان، ایک سادہ، ایک مثبت انداز کی ایسی طاقتور محنت دی ہے، جس محنت کے ذریعے سے ایک ہی وقت میں یہ ساری چیزیں پورے عالم میں پھیلتی چلی جائے گی اور زندگیوں میں آتی جائے گی. اس کے لیے دوست بزرگوں، ہر مسلمان کی یہ 2 ذمہ داریاں ہیں. یہاں سے اس ذمہ داری کے احساس کو لے کر کے جانا ہے. جو اللہ کے راستے میں جا رہے وہ بھی، جو اپنے گھروں کو واپس جا رہے وہ بھی، اس ذمہ داری کا احساس لے کر جائے کہ ہمارے ذمہ کام کیا ہے. ہمارے ذمہ ایک کام ہے، 100% دین اسلام پر چلنا. دوسرا ہمارے ذمہ کام ہے اس بات کی محنت کرنا کہ یہ 100% کامل اور مکمل دین اسلام میری اپنی زندگی میں بھی آ جائے، میرے گھرانے میں آ جائے، میرے محلے میں آ جائے، میری بستی میں آ جائے، اور پوری امت مسلمہ میں، اور امت مسلمہ کے راستے سے پوری انسانیت میں آ جائے. اس لیے کہ یہ ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے، یہ ہر ایک تک پہنچ جائے. اس ذمہ داری کا احساس اللہ کے راستے میں جانے والی جماعتوں کو بھی پیدا کرنا ہے، اپنے گھروں پر واپس جانے والوں کو بھی اس کا احساس پیدا کرنا ہے. اور گھروں پر جانے والوں کو تو جاتے ہوئے افسوس کے ساتھ جانا چاہیے کہ دیکھو یہ اجتماعات اس لیے ہوتے ہیں کہ اجتماعات کے موقع پر ہر گھر سے کم ہم ایک نہ ایک فرد اللہ کے راستے میں جائے. یہ کوشش ہوتی ہے، اس کے لیے محنت ہی ہوتی ہے، اور یہ اجتماعات ہوتے ہیں کہ ہر گھر سے کم ایک فرد اللہ کے راستے میں جائے. لیکن اس کے اندر کمی رہی، اس کمی کا احساس، اور میں نہ جا سکا یہ اللہ کے راستے میں جانے والے، اور میں نہ جا سکا اس افسوس کے ساتھ میں جانا کہ کیا اچھا موقع تھا لیکن میرے لیے آسانی نہیں ہوئی. جو جا رہے ہیں وہ شکر گزاری کے ساتھ جائے، اللہ کا کتنا احسان ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے اس کو آسان کر دیا. और जो घरों को वापस जा रहे हैं वो नदामत और अफसोस के साथ में जाए, ये सहाबा की सिफत है। सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला मजमईन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तकाजे पर तश्कील करते थे, उस तश्कील पर जिनके लिए आसानी होती थी वो तैयार हो जाते थे, जिनके पास में उस लाइन के वसाइल नहीं होते थे तो मजबूरी की वजह से वो घरों पर रहते थे, मजबूरी की वजह से तो वो ऐसे ही वापस नहीं लौटते थे। कुरान ने उनका हाल बयान किया है, तवल्लौ वअयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम, फरमाया ये इस तरीके से वापस हो रहे कि आंसू बह रहे, आंसू बहाते हुए वापस जा रहे हैं कि अल्लाह के दीन का एक तकाजा था, उस तकाजे पर मुझे भी जाना चाहिए था लेकिन मैं न जा सका, तो ये रोते हुए घरों को वापस जा रहे। इसलिए मेरे भाइयों, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो अपने जमाने में जो काम दिया है इसके अंदर दो रुख है, एक अल्लाह के रास्ते में जाकर के काम करना है और मकाम पर भी काम करना है। इसलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की दो जमातें बनाई, तीसरी कोई जमात नहीं, एक मुहाजिरीन की जमात, एक अंसार की जमात। और फरमाते थे मुसलमान या तो हिजरत में होना चाहिए या नुसरत में होना चाहिए, या अल्लाह के दीन की निस्बत पर बाहर की नकलो हरकत में हो, या मकाम पर है तो अल्लाह के दीन की नुसरत में हो। ये कैसा मुसलमान है कि जो न बाहर की नकलो हरकत में है न मकामी नुसरत में है। इसलिए हर मुसलमान ये तय कर ले कि या तो हम बाहर की नकलो हरकत में रहेंगे या ये के मकामी मेहनत में रहेंगे, क्यों रहेंगे इंशाल्लाह। इसलिए देखो, एक तो अल्लाह के रास्ते में जाकर के काम करना है, और ये हम सबको अल्लाह के रास्ते में जाना है, अगरचे हम इस वक्त में नहीं जा रहे हैं तो लेकिन अपने मकाम पर जाने के बाद 3 दिन के लिए जाएंगे, 4 महीने के लिए जाएंगे, चिल्ले के लिए जाएंगे, तो जो बातें अल्लाह के रास्ते में जाने वालों से कही जा रही है ये भी हमारी जरूरत की चीजें हैं। इसलिए कि जो काम अल्लाह के रास्ते में जाकर करना है वही काम हमें अपने मकाम पर करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पूरा वक्त फारिग करके जा रहे हैं, इनको 16 घंटा ये काम करना है और हमें अपने मकाम पर रहते हुए मकामी अपनी मसरूफियत के साथ में करना है, तो कमी के साथ में करना है लेकिन करना जरूर है। जैसे ये 4-4 घंटा दावत में अपना वक्त लगाएंगे, 4 घंटा तालीम सीखने सिखाने में लगाएंगे, 4 घंटा जिक्र तिलावत इबादत में लगाएंगे, 4 घंटा खिदमत और अखलाक की मश्क में लगाएंगे, 16 घंटा तो काम में लगाएंगे और 8 घंटा अपनी राहत आराम में लगाएंगे। और अब वापस जाने वाला जो मजमा है उनसे जो है उनको भी यही काम करना है, लेकिन चूंकि घर पर अपने और तकाजे भी होते हैं उन तकाजों के साथ में इसको थोड़ी मिकदार में करना है। रोजाना का मशवरा है 2.5 घंटे के रास्ते से अपने अपनी मस्जिद के अतराफ में जितने मुसलमानों के मकान हैं एक एक को टारगेट बनाकर उनके घरों में बैठ करके इनके सामने ईमान की आमाल की आखिरत की बात करना है। हफ्ते के 2 गश्त है, 2 घर की तालीम है, इसी तरीके से जो है 3 दिन महाना है, तो ये भी अपने अपने मकाम पर जाने के बाद ये काम करना है। इसलिए मेरे भाइयों, जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं सबसे पहले तो अपनी नीयत को दुरुस्त करें। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। वइन्नमा लिकुल इम्रिइन मा नवा, आदमी जिस चीज की नीयत करता है वो चीज अल्लाह उसको अता फरमाते। इसलिए अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं तो क्या नियत करना चाहिए। उनवान चाहे अलग हो लेकिन चीज एक ही है, भाई अल्लाह ताला को पाने के लिए अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। हमें अल्लाह मिल जाए, अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल गया, अल्लाह नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। अल्लाह को पाने का क्या मतलब है? हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा हो जाए, अल्लाह का डर हमारे दिलों में पैदा हो जाए, ये यकीन पैदा हो जाए कि मेरी दुनिया आखिरत की कामयाबी और नाकामी का मदार न मुल्क पर है, न माल पर है, न ओहदों पर है, न डिग्री पर है, न सोने चांदी पर है, न डिग्रियों पर है, न सोने चांदी के सिक्कों पर है, न जमीन के टुकड़ों पर है। मेरी कामयाबी और नाकामी का मदार सिर्फ एक अल्लाह के हाथ में है। कौन से रास्ते से मिलेगी? फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते से मिलेगी। ये यकीन दिलों के अंदर पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए, और अल्लाह मिल नहीं सकता है जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की चाल न चले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की चाल न चले। इसलिए मेरे भाइयों, फरमाए अल्लाह को पाने के लिए जा रहे, अल्लाह हमें मिल जाए। और हर मुसलमान की गरज है कि हमें अल्लाह मिल जाए। अल्लाह मिल गया, सब कुछ मिल गया, हमारी जिंदगी का मकसद ही ये है, हमारी जिंदगी का मकसद ही यह है हमें अल्लाह मिल जाए। और अल्लाह के पाने का रास्ता वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। जिसने आका की जिंदगी की चाल चली और जिन्होंने आका का इत्तिबा किया वो अल्लाह तक पहुंच जाएगा, अल्लाह को पा लेगा। इसलिए फरमाया इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम, मेरा रब कहाँ है? सिरातिन मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर अल्लाह मिलेगा। और वो सीधा रास्ता कौन सा है? वो सीधा रास्ता नबियों वाला, सिद्दीकीन वाला, शुहदा वाला और सालेहीन वाला रास्ता है। ये रास्ते पर जो चला फिर मैं अल्लाह को पा लेगा। दूसरा रास्ता मग़ज़ूबे अलैहिम और वलद्दालीन है, फिर मैं वो रास्ता कौन सा है? जिस पर अल्लाह का गजब उतरा और जो सही रास्ते से भटक गए वो कौन है? वो फरमाया यहूदो नसारा है। फरमाया जान कर न चलना, ये यहूदी मिजाज है, जानते बूझते न चलना। इसलिए कि ये यहूदी जानते थे कि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहचानते थे, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, ये अल्लाह के नबी को ऐसा पहचानते हैं जैसा कि अपनी औलाद को पहचानते हैं, औलाद के पहचानने में कोई शक शुबा नहीं होता, ऐसा अल्लाह के नबी को पहचानते थे। लेकिन हसद और बुग्ज और इनाद की बुनियाद पर माना नहीं, ये मकसूद अलैहिम है। इसी तरीके से जो है बगैर सीखे अंधाधुंध चलना, ये ईसाइयों का मिजाज है। मुसलमान का मिजाज क्या है? सीखना और सीखते हुए उसके ऊपर चलना, चलते हुए उसको दूसरों तक फैलाना, ये मुसलमान का मिजाज है। नबी सिद्दीकीन शुहदा और सालेहीन वाला रास्ता है। इसलिए मेरे भाइयों फरमाए हम अल्लाह के रास्ते में इसलिए जा रहे हैं कि हमारी अपनी पूरी जिंदगी दीनदारी वाली बन जाए। और हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं है। इसलिए आप वाला काम उम्मत के हर फर्द पर इसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी का एहसास मेरे अंदर पैदा हो जाए। और ये तीन दिन चिल्ला चार महीने का काम नहीं है बल्कि मौत तक करने का काम है, इसको मैं सीखने के लिए और करने के लिए जा रहा हूं। इसलिए कहते हैं चार महीना ऐसा अच्छा लगाए कि जिसमें पहले चिल्ले में जंग उतर जाए, दूसरे में रंग चढ़ जाए और तीसरे में काम करने का ढंग आ जाए। बात आ रही समझ? इसलिए फरमाया एक तो अपनी नियत दुरुस्त करना, फिर उसके बाद में अपनी जिंदगी में लाने के लिए चंद बुनियादी आमाल बताए जाते हैं, उन बुनियादी आमाल की रियायत के साथ अपना वक्त लगाएंगे तो इंशाल्लाह इसके रास्ते से रोज हमारे अंदर तरक्की होती जाएगी। एक तरफ हमारा ईमान भी बन रहा हो, दूसरी तरफ हमारी जिंदगी में हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल सुन्नत के मुताबिक आ रहा हो, और तीसरे नंबर पर हमारे अखलाक भी बन रहे हो। इसके लिए हमारे जो छह सिफात है, इन छह सिफात को बुनियाद बनाकर हम मेहनत करेंगे तो इस मेहनत के रास्ते से थोड़े से वक्त के अंदर हमारी पूरी जिंदगी दीनदारी वाली बन जाएगी। सबसे पहले हमें कलमे पर मेहनत करना है कि हमारा कलमा ठीक हो जाए, उसके अल्फाज भी ठीक हो जाए, इसी तरह उसके मानी भी ठीक हो जाए और उसके तकाजों पर चलना भी हमें आ जाए। कलमे के अल्फाज भी ठीक होना जरूरी है, उसका मानी मतलब भी मालूम हो जाए और उसके तकाजों पर चलना भी हमें आ जाए। इसलिए सबसे पहले कलमे पर मेहनत करना, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 24 घंटे की जिंदगी आ जाए उसलिए उसको सीखना, और इसी तरीके से नमाज पर मेहनत करना कि हमारी नमाज जानदार बन जाए, हमारी नमाज जानदार बन जाए, नमाज का जाहिर भी ठीक हो जाए, नमाज का बातिन भी ठीक हो जाए। ये जाने वालों का भी काम है, मकाम पर वापस जाने वालों का भी काम है, और ये चिल्ले चार महीने तक का काम नहीं है बल्कि ये तो मौत तक का काम है। अगर मौत तक काम मेहनत करते रहे अपनी नमाज पर और नमाज जानदार बन गई तब भी सस्ता सौदा है। इसलिए पूरा मजमा ये तय करे कि हम मौत तक अपनी नमाज पर मेहनत करेंगे, करेंगे वह इंशाल्लाह। इसी तरीके तीसरा काम हमें जो करना है वो ये कि हमारी 24 घंटे की जिंदगी इल्म की रोशनी में आ जाए। मुसलमान जाहिल नहीं होता, मुसलमान तो अपने दीन से बाखबर होता है, मुसलमान अपने दीन से बाखबर होता है। एक आदमी मुलाजिमत करता है तो उसको मुलाजिमत के लाइन का दीन मालूम होना चाहिए, एक तिजारत करता है तिजारत के लाइन का दीन मालूम होना चाहिए, इसी तरह सफर कर रहा है सफर के लाइन का दीन मालूम होना चाहिए, शादी करने जा रहा है तो शादी के लाइन का जो है इल्म उसको दीन मालूम होना चाहिए, और मालूम करके उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को डाल रहा हो। इसके लिए आसान रास्ता यह है कि अपने अपने इलाके के जो उलमाए रब्बानीन है उन उलमा के साथ हमारा अपना रब्त होना चाहिए और पूछ पूछ करके अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर रहे हो। उलमा ने लिखा है कि जो अपने कारोबार को उलमा से पूछ पूछ करके दीन के मुताबिक लाते हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत देते हैं, अल्लाह उनके कारोबार की हिफाजत भी करते हैं। इसलिए मुसलमान फरमाए जाहिल नहीं होता, अपने जो है दीन से बाखबर होता है। इसलिए जाने वालों का भी ये काम है, वापस जाने वालों का भी ये काम है कि 24 घंटे की जिंदगी हमारे इल्म की रोशनी में आ जाए। इसी तरीके मुसलमान गाफिल नहीं होता, मुसलमान गाफिल नहीं होता, बल्कि मुसलमान तो हर वक्त उसको अल्लाह का ध्यान होता है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे जान रहा है, जहां कहीं भी रहे अल्लाह के ध्यान के साथ में रहे। देखो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के ऊपर ऐसी मेहनत की थी जिस मेहनत के नतीजे में मर्दों में औरतों में जवानों में बूढ़ों में चरवाहों में उनके गुलामों में जहां कहीं रहते थे उनके अंदर अल्लाह का ध्यान था। आप अंदाज लगाए अब्दुल्लाह इब्ने उमर सफर में जा रहे हैं, रास्ते में जंगल बयाबान में एक चरवाहा मिला, दोपहर में अपना दस्तरखान बिछाया, चरवाहे से कहा आजा तू भी हमारे साथ खाना खा ले। तो चरवाहे ने कहा मेरा तो रोजा है और वो भी नफली रोजा था। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा ऐसी तेज लू में तू रोजे से? बोले हाँ, मैं आखिरत की तैयारी कर रहा हूँ, मरने के बाद आखिरत की जिंदगी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहा हूँ, इम्तिहान लिया। अच्छा तू अपनी एक बकरी हमारे हाथ फरोख कर दे, हम तुझे पैसा भी देंगे गोश्त भी देंगे इफ्तार में काम देगा। तो उसने कहा ये बकरियां मेरी नहीं, ये तो मेरे मालिक की है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा अपने आका और मालिक को समझा देना कि भेड़िया खा गया। तो वो कहने लगा फाइन अल्लाह, मालिक को तो मैं समझा दूंगा लेकिन मेरा अल्लाह कहाँ चला जाएगा, मेरा अल्लाह कहाँ जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर मजे ले लेकर के यूं कहते थे, एक चरवाहा यूं कह रहा है फाइन अल्लाह फाइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ चला जाएगा, अल्लाह कहाँ चला जाएगा। इसलिए मुसलमान फरमाए जहां कहीं भी रहे, कारोबार में हो मुलाजमत में हो दुकानों में हो इसी तरह जंगल बयाबान में हो सफर में हो हजर में हो जहां कहीं भी हो फरमाए अल्लाह के ध्यान के साथ में रहे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरे हर हरकत सुकून को जान रहा है, इस ध्यान के साथ में रहे। इसलिए अल्लाह के ध्यान को पैदा करने के लिए जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे वो भी अल्लाह का जिक्र खूब करे, जो मकाम को वापस जा रहे है वो भी अल्लाह का जिक्र कसरत से करे। इसके लिए फरमाइए सुबह शाम की तस्बीहात के अहतमाम, तीन तीन तस्बीह बड़ी जानदार ताकतवर चीज है ये तस्बीह का एहतिमाम। जमातों में जाने वाले फजर की नमाज से पहले अच्छा मौका होता है, और ऐसे ही वापस जाने वाले उनके लिए भी फजर के पहले अच्छा मौका होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसका मफहूम यह है, फरमाया अश्शिता रबीउल मुमिन, फरमाया अभी तो जाड़े का मौसम चल रहा है ना सर्दी का मौसम, फरमाया सर्दी और मौसम सरमा ये तो मोमिन के लिए बहार है, इसमें बहार क्यों बहार है, फरमाया रातें लंबी है खड़ा होकर अल्लाह के सामने मुनाजात कर ले, नींद भी पूरी हो जाती है लंबी रात है खड़े होकर अल्लाह से राजो नियाज की बातें करे, और दिन छोटा है रोजा रखना चाहे तो रोजा रख ले भूख भी नहीं और जो है बिल्कुल यानी हल्के थोड़े आसानी के साथ में रोजा भी हो जाए। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु तो जब सर्दी का मौसम आता था तो फरमाते थे मरहबम बिश्शिता मरहबम बिश्शिता, मौसम मुबारक हो तेरा आना खुश आमदेद हो, इसलिए कि रात लंबी है जिसमें नींद भी पूरी हो जाती है और अल्लाह से राजो नियाज का लंबा वक्त मिलता है, दिन छोटा होता है जिसमें रोजा रखना चाहे तो रोजा भी रख सकता है। इसलिए रातों को जो है ईशा की नमाज के बाद दावत के तकाजे पूरा करने के बाद इधर उधर की बातों में न लगे बल्कि जल्दी आराम करे और फजर की नमाज से सुबह सादिक से आधा घंटा पौना घंटा पहले उठ जाए, दो रकात नमाज पढ़े। जिस वक्त में अल्लाह की तरफ से निदा आती है, कोई है मांगने वाला मैं उसकी मांग पूरी करूं, कोई है रोजी तलब करने वाला मैं उसको रोजी अता करूं, कोई है अपने गुनाहों से माफी मांगने वाला मैं उसके गुनाहों को माफ करूं, इसलिए जाने वाले भी अल्लाह के रास्ते में वापस लौटने वाले भी इसका एहतिमाम करे, बड़ा अच्छा मौका होता है। अल्लाह को वो बंदा बड़ा प्यारा है कि जो आधी रात को उठ करके अल्लाह से मांगता हो, अल्लाह के सामने खड़े होकर, और फिर उसके बाद में फिर जो है दो रकात चार रकात अल्लाह जितनी तौफीक दे पढ़ने के बाद फिर 15-20 मिनट दिल लगाकर अल्लाह से दुआ मांगे। अल्लाह से करीब होने का मुख्तसर और शॉर्टकट रास्ता अल्लाह से मांगते रहना, अल्लाह से मांगते रहना। 15-20 मिनट तो दिल लगाकर मांगने का एहतिमाम करे, जी ना लगे तो भी, इसलिए कि शुरू शुरू में दिल नहीं लगेगा, इसलिए कि दिमाग में अभी भरा हुआ होगा, लेकिन जब मुजाहदे के साथ मांगते रहेंगे अल्लाह भी देखेगा मेरा बंदा मुजाहदे के साथ मांग रहा है, तो फरमाया फिर अल्लाह ताला उस मुजाहदे की बरकत से वो दिल मुतवज्जे कर देंगे। फिर तो मांगने में वो मजा आएगा कि हाथ नीचे रखने को दिल नहीं चाहेगा। तो ये 15-20 मिनट दिल लगाकर मांगने का एहतिमाम, फजर की नमाज से पहले 3 तस्बीह पढ़ने का एहतिमाम, तीसरे कलमे की जो पूरे कुरान का खुलासा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, और कौन ये दावा कर सकता है कि मैं कुसूरवार नहीं हूं, अल्लाह के नबी फरमाते कुल्लुकुम खताउन व खैरुल खताइन अत्तवाबून, तुम सब कुसूरवार हो, बेहतरीन कुसूरवार वो है जो अल्लाह से माफी मांगे, इसलिए सब तय करें सुबह शाम 100 मरतबा इस्तिगफार करेंगे। ये अपने जमात में जाने वाले भी और वापस लौटने वाले भी और अपने घरों में इसका रिवाज डाले, हमारी औरतें भी अल्लाह के जिक्र का एहतिमाम करें, कुरान पाक की तिलावत का एहतिमाम करें। फजर की नमाज से पहले आपको मौका मिल जाएगा एक पारा पढ़ने का एहतिमाम, इस ध्यान के साथ पढ़े कि मैं अल्लाह को सुना रहा हूं, मेरा अल्लाह मेरा कुरान सुन रहा है, या अल्लाह मुझे कुरान सुना रहे हैं, मैं अल्लाह का कुरान सुन रहा हूं। इस ध्यान के साथ जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं एक पारा पढ़ने का एहतिमाम, घरों पर जाने वाले हैं वो भी अपने घरों में इसका एहतिमाम करे, हमारे घर के छोटे बड़े मर्द औरतें कुरान पाक की तिलावत का एहतिमाम करें सीख, और अगर जानते नहीं तो ये क्या बात हुई कि दुनिया में आए और कुरान नहीं सीखा, ये क्या बात हुई कुरान नहीं सीखा, हालांकि कुरान को तो अल्लाह ने आसान कर दिया है, 7 साल का बच्चा 8 साल का बच्चा 9 साल का बच्चा पूरा कुरान अपने सीने में ले लेता है, तो क्या अगर हम ये कोशिश करें कि हम कुरान पढ़ने वाले बने तो नहीं सीख सकते। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगर आपने 4 महीना खाली मेहनत कर ली, 4 महीने में आप कुरान शरीफ पढ़ने वाले बन जाए, 4 महीने में कुरान शरीफ पढ़ने वाले बन जाए। तो जो पढ़े हुए नहीं है वो यहां से नियत इरादे लेकर के जाए कि हम कुरान करीम के साथ में हमारा ताल्लुक होना चाहिए और कुरान करीम को सीखने का एहतिमाम करें, करेंगे भाई इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ में हमारे अखलाक दुरुस्त हो जाए, मुसलमान बा अखलाक होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुआजिजात दिए उनमें का एक मुआजिजा फरमाया आपके अखलाक थे, आपके अखलाक थे कि जिसके नतीजे में वो लोग जो ये कसमें खाते थे हम पहाड़ से कूद कर गिर जाएंगे, समंदर में डूब कर मर जाएंगे और हम आग में जल कर मर जाएंगे, लेकिन ऐ मोहम्मद तेरा कलमा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी के वो अखलाक जिस अखलाक के नतीजे में ऐसे कट्टर दुश्मन भी आपके जिगरी दोस्त हो गए और जो आपकी जान लेने वाले थे वो आपके ऊपर जान निसावर करने वाले बन जाए। इसलिए फरमाया मोमिन फरमाया बद अखलाक नहीं होता, मोमिन तो अखलाक वाला होता है, इसलिए हर एक को अपने अपने अखलाक को दुरुस्त करना है। फरमाया जहां कहीं भी रहे कांटा बनकर न रहे बल्कि फूल बन करके रहे, घर में रहे अपने बीवी बच्चों के साथ में फूल बन करके रहे, समाज में रहे फूल बन करके रहे, इसी तरह जो है मुआशरे में रहे फूल बन करके रहे, जमात में रहे फूल बन करके रहे, अपने साथियों में रहे फूल बन करके रहे, कांटा बन करके न रहे। इसलिए इसकी भी मश्क करना है, और इसमें बाज मर्तबा अपने तबीयत के खिलाफ बात आती है, तो तबीयत के खिलाफ बात आए तो क्या करना भाई, बर्दाश्त करना, गुस्से में आपे से बाहर नहीं हो जाना बल्कि गुस्से को पी जाना। देखो सबसे ज्यादा उम्दा घूट जो आदमी पीता है वो गुस्से का घूट है। और यूं फरमाया जो गुस्से का घूट पी ले कल कयामत के मैदान में अल्लाह ताला हूरों को सामने करेंगे और कहें जौन सी हूर चाहे वो ले ले तेरे गुस्सा पीने का ये इनाम। और फरमाया गुस्सा ये आदमी के ईमान को इन्नल गज़ब लयुफ्सिदुल ईमान कमा युफ्सिदुस सबीरुल असल। फरमाया गुस्सा आदमी के ईमान को ऐसे खराब कर देता है जैसे एलवा शहद जैसी मीठी चीज को खराब कर देता है। इसलिए भाई अखलाक को खराब करने में गुस्से को बड़ा दखल है, इसलिए अपने आप को गुस्से से बचाना। बात आई समय? इसलिए अपनी पूरी जिंदगी अखलाक वाली बन जाए। इसलिए हमारा चौथा नंबर इकराम है, इकराम मुस्लिम। और दुनिया में जो दीन फैला है फरमाया तकरीरों से नहीं फैला, बयानों से नहीं फैला, बल्कि वो तो अल्लाह के नबी के अखलाक के रास्ते से फैला है, सहाबा के अखलाक के रास्ते से फैला है। ये इसलिए मुसलमान अपनी अखलाकी जिंदगी को अच्छा बनाए, जमातों में जाने वाले इसकी मश्क करे। देखो एक माँ बाप के 5 बेटे होते हैं, इनका मिजाज एक तरीके का नहीं होता, तो यहाँ तो हर एक के माँ बाप अलग है तो सबका मिजाज एक तरीके का कहाँ होगा। एक माँ बाप के 5 बेटे, कोई नरम है कोई गर्म है, कोई नरम है कोई गर्म है, कोई सलीके वाला है बेसलीके वाला है, लेकिन इसके बावजूद सबको निभाते हैं। और फरमाए कलमे का रिश्ता तो खून के रिश्ते से भी आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए एक दूसरे के इकराम के साथ में चलना, इसी तरीके से इस जज्बे के साथ में चलना, हर मुसलमान अल्लाह को सामने रखकर और जन्नत के शौक में चले, अल्लाह को राजी करते हुए जन्नत के शौक में इस बात की मशक करना। और भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं है, इसलिए दूसरी जिम्मेदारी है मैं ये फिक्र लेकर के जाऊं ये बातें मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरी बीवी में आ जाए, मेरे बच्चों में आ जाए, मेरे मोहल्ले में आ जाए, मेरी बस्ती में आ जाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा में जिंदा हो जाए। इसके लिए अपनी जान माल के जरिए से कुर्बानी देना। देखो अल्लाह ने जान और माल दिया ही इसके लिए है कि सबसे ज्यादा हमारी जान और माल कहाँ लगे, जहां अल्लाह के नबी की लगी, और अल्लाह के नबी की और सहाबा की कहाँ लगी, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने। हर मुसलमान की जान और माल का सबसे पहला मसरफ और ज्यादा मसरफ वो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने में लगी, दूसरा मसरफ अल्लाह के इबादत और इस्लाम के अरकान को जिंदा करने में लगे, इबादत में लगे, नमाज में, रोजे में, जकात में, हज में, इसमें लगे, और तीसरा अपनी जान और माल का मसरफ अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करने में लगे, और चौथा बकदरे जरूरत इस्लाम से बचाते हुए अपनी जरूरत में लगाना। इसलिए कि हर इंसान के साथ जरूरतें लगी हुई है, खाना है, कपड़ा है, मकान है, सवारी है, शादी है, हर इंसान की जरूरत है, लेकिन जरूरत में बकदरे जरूरत लगाना, फजूल खर्ची और इसराफ से बचाते हुए लगाना, इसलिए कि जरूरत का दर्जा और उसकी हद है, लेकिन फजूल खर्ची और इसराफ की कोई हद नहीं है। इसराफ की मिसाल तो आग की तरह है, आग में जितनी लकड़ी डालेंगे आग कभी नहीं कहेंगे कि बस नहीं, बल्कि हल में मजीद और लाओ, जितनी आग में लकड़ी जाएगी उतनी और भड़केगी। ऐसे जो आदमी ख्वाहिश में कदम रखेगा फरमाया कि उसका उस आग कभी रुकेगी नहीं बल्कि और भड़कती जाएगी। तो बकदरे जरूरत अपनी जरूरत में लगाना, जब इन बुनियादों के साथ में अपनी जान और माल को अल्लाह के कलमे को बुलंद करने में, इबादत और अरकान इस्लाम के जिंदा करते हुए, अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करते हुए, बकदरे जरूरत अपनी जरूरत में लगाते हुए जब चलेंगे, तो हम जिस काम में भी लगे हुए हैं, चाहे वो हमारा तिजारत का काम हो, चाहे मुलाजिमत का काम हो, जिस काम में भी लगे हुए हैं, फरमाया ये काम हमको अल्लाह से दूर नहीं करेगा बल्कि ये काम हमको अल्लाह से करीब करेगा। इसलिए कि दुनिया के जितने काम हैं इन बुनियादों के साथ में अगर करेंगे तो ये काम भी हमको अल्लाह से करीब करेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने इसके फजाइल सुनाए, जो अमानतदारी और सच्चाई के साथ तिजारत करेगा, ये सच्चाई और अमानतदारी के साथ तिजारत करना नबी सिद्दीकीन शुहदा के साथ में उठाया जाएगा। इसी तरीके से फरमाया जो मजदूरी करता है मजदूर, फरमाया दिन भर में थक के चूर हो जाता है, शाम को अल्लाह इसकी जरूरत भी पूरी करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। एक काश्तकार जमीन पर मेहनत करता है, जब तक खेती हरी भरी होती है तस्बीह पढ़ती है अल्लाह को याद करती है, ये उसका अजर इसको मिलता है, चोर खा जाए मोर खा जाए सदके का सवाब मिलता है। अंदाज लगाओ कितने बड़े फजाइल है। इसलिए मेरे भाइयों फरमाया इन बुनियादों के साथ अगर हम दुनियावी कामकाज में लगेंगे तो फरमाया ये कामकाज में लगना ये हमें अल्लाह से दूर नहीं करेगा बल्कि अल्लाह से करीब करेगा। खाली एक काम करना है, अल्लाह के हुक्म से लगना, अल्लाह के हुक्म से छोड़ना, बस इतना आ जाए। मौला आज हम लोग क्या करते हैं, जब दावत के दिन के तकाजे आते हैं तो हम लोग इसको बहाना बनाते हैं, बोले दुनिया के कामकाज करना भी तो दीन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जिस दुनिया को तुम अल्लाह के लिए छोड़ नहीं सकते हो तो समझो तुमने उस दुनिया को अल्लाह के लिए पकड़ा भी नहीं है। अल्लाह के लिए पकड़ना आ जाए, अल्लाह के लिए छोड़ना आ जाए, बात आ रही समझ? अल्लाह के लिए पकड़ना आ जाए, अल्लाह के लिए छोड़ना आ जाए, इसको सीखने के लिए 4 महीना लगाया जाता है कि भाई अल्लाह के रास्ते में जाकर के ऐसी अपनी पर मेहनत कर ले कि अल्लाह के लिए पकड़ना आ जाए, अल्लाह के लिए छोड़ना आ जाए। इसलिए इन 4 अब जो है इसके लिए हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त फरमाया एक तो दावत इल्लाह में लगी, एक एक जहां जो जमात अल्लाह के रास्ते में जाए उस मस्जिद के अतराफ में, उन देहातों में, उन बस्तियों में एक एक की खुशामद करके इनको अल्लाह से जोड़ने की मेहनत करना, नकद जमात अल्लाह के रास्ते में निकालना, 4 महीना कम से कम 4 महीने की एक जमात निकाले, चिल्ले की एक जमात जरूर निकाले, और जहां से एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में जाए तो 3 दिन की जमात तो आखिरी दर्जे में हर मस्जिद से जरूर निकाले, इसका पूरा एहतिमाम करें तो दावत में हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त लगे, सीखने सिखाने में हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त लगे, और जिक्र तिलावत इबादत में हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त लगे, खिदमत एक दूसरे को राहत पहुंचाने में हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त लगे, इसी के साथ में बचने की चीजों से अपने आप को बचाना, हमारा वक्त जाये ना हो, इसलिए जो है बचने की चीजों से बचाना, फजूल खर्ची से बचाना, दिल के सवाल से बचाना, जबान के सवाल से बचाना, किसी की कोई चीज इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं करना, और ये सिर्फ अल्लाह के रास्ते में जाने वालों के लिए नहीं है बल्कि ये तो हर एक के लिए है। अल्लाह के रास्ते में तो इसकी मश्क करने के लिए जाना है कि हमें ऐसी आदत पैदा हो जाए कि जिसके नतीजे में मौत तक हम इसके ऊपर जमने वाले बन जाए, और ये बचने की वो चीजें है जिसके रास्ते से हमारे अंदर तकवा पैदा होगा, हमारे अंदर तकवा पैदा होगा। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों इसके पूरे एहतिमाम के साथ में, अमीर की इताअत के साथ में चलना, मस्जिद की 4 दीवारी में अपना वक्त लगाना, और इसी तरह साथी में आजीज़ी इंकिसारी के साथ वक्त लगाना, इनफिरादी इज्तिमाई अमाल की पाबंदी के साथ में चलना, 6 नंबर की लगाम के साथ में चलना, और इसी तरीके से दिन में मखलूक पर मेहनत करना, रात में खालिक पर मेहनत करना, हमारे पूरे काम का खुलासा है दावत और दुआ। दावत कहते हैं मखलूक की खुशामद करना, एक एक की खुशामद करना, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, नरमी के साथ, उसकी खैरखाही को अपने दिल में लेते हुए इसका अल्लाह से कैसे ताल्लुक हो जाए, अल्लाह के नबी से उसका कैसे ताल्लुक हो जाए, इसका आखिरत से कैसे ताल्लुक हो जाए, इस ध्यान के साथ और इस फिक्र के साथ, इस कुड़न के साथ में दिन भर में एक एक के पीछे मेहनत करना और एक एक की खुशामद करना। दिन भर में एक एक की खुशामद करना, उसको अल्लाह से जोड़ने की मेहनत करना, और अपने आप को खूब थकाना पैदल सवारी पर जैसे मौका है, और ऐसे ऐसे देहातों में, ऐसे ऐसे इलाकों में जहां पर एक मुसलमान का घर है, 2 घर है, 3 घर है, 5 घर है, किसी को छोड़ना नहीं है, उनके औकात को और उनके मिलने के औकात को मालूम करके उनके पास में जाना, और हमारा ये थोड़ी देर की कुर्बानी देना और उसकी मुलाकात करना, आप यकीन मानो हमारा तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, 1-2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हमारे इस 2 घंटे पर उसके ईमान महफूज हो जाएगा, और उसके ईमान के महफूज होने की बरकत से अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा देंगे। इसलिए दिन भर में खूब अपने आप को थकाना और रात को उठ करके अल्लाह के सामने आवाजारी करना, अल्लाह से मांगने का एहतिमाम करना, इसलिए कि दिन भर में हमने मेहनत की और रात को उठ करके अल्लाह से मांगने का एहतिमाम नहीं किया तो हमारी मेहनत अधूरी है। ये पूरी मेहनत कब होगी, जब दीन की मेहनत जिसमें दावत है, तालीम है, खिदमत है, सीखना सिखाना है, और रात की मेहनत इबादत और अपने बस भर की जो है नमाज कयाम, फिर उसके बाद अल्लाह से मांगने का एहतिमाम, जब दिन भर की मेहनत होगी, दिन भर की मेहनत होने के बाद रात को अल्लाह से मांगेंगे तो दिन भर की मेहनत में अल्लाह जान डाल देंगे, अल्लाह के सामने आंसू बहाना, आंसू की अल्लाह के यहां बड़ी कीमत है। और देखो हमें ये जो इतना बड़ा काम मिला है ये भी रोने धोने के रास्ते से मिला है, मौलाना रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मियां जाओ जाओ, ये तो मौलाना दहली का कमाल है, यानी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का, उन्होंने रो धो करके अल्लाह को मना लिया है, जिसके नतीजे में एक 60 साल का 70 साल का बिगड़ा हुआ 4 महीना अल्लाह के रास्ते में जाता है और सही तरीके से अपना वक्त लगाता है, जिसके नतीजे में उसकी जिंदगी में तब्दीली आ जाती है, ये हमारी समझ से बाहर की बात है। ये तो मौलाना दहली रहमतुल्लाह अलैह रो धो करके अल्लाह को मना दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, दिन भर में खूब मेहनत करके रात को अल्लाह से खूब जो है बिल बिलाकर आहे भर भर करके अल्लाह से मांगने का एहतिमाम करना, और ये जो आंसू बहेंगे इन आंसू के रास्ते से अल्लाह ताला हमारे दिलों की मुर्दनी को भी खत्म करेगा, और साथ ही साथ जिस इलाके में हमारी जमातें काम कर रही है या मकाम पर जो मेहनतें हो रही है, इन आंसू के रास्ते से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों की इलाकों की मुर्दनी को भी खत्म करेंगे, और वहां पर वो लहलाएगा बाग जिसको मैं और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जिस तरह जमीन पर आसमान से पानी बरसता है, जमीन लहला उठती है, इसी तरीके से मेरे भाइयों, फरमाया उन इलाकों में जाकर जब काम करेंगे दिन भर में और रातों को आंसू बहाएंगे गरम गरम, इसके जरिए से अल्लाह ताला वहां पर ऐसी जो है हरियाली और वो ईमान की लहरें, अखलाक जिंदगी, आमाल की वो बहार, वो सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके रास्ते से जिंदा करेंगे। इसके लिए मेरे भाइयों, ये जो बातें आपके सामने अर्ज की गई, उन चीजों की रियायत के साथ जो है अपने आप को लगाना है। अल्लाह बरकत दे। वापस जाने वाले जो हजरात हैं, वो हजरात भी जैसे मैंने शुरू में बात कही कि हमारे काम के दो रुख हैं, और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुसलमान या तो हिजरत यानी बाहर के नकलो हरकत में हो, या ये के नुसरत में हो। ये कैसा मुसलमान है जो न बाहर की नकलो हरकत में हो न जो है मकामी मेहनत में हो। इसलिए हमारे काम के दो रुख है, बाहर जो वापस जाने वाले हजरात है, मकाम पर जाने के बाद अपने घर कारोबार के साथ में जो मकामी आमाल बताए जा रहे हैं, ये मकामी आमाल अगरचे बहुत छोटे और बहुत मुख्तसर है, लेकिन उसमें खत्मे नबूवत की ताकत है, खुद में खत्मे नबूवत की ताकत लिए हुए है। एक एक अमल पूरे पूरे आलम के बातिल के तोड़ने की ताकत अल्लाह ने इसमें रखी है। क्यों? इसलिए कि ये जो अमाल है, ये अमाल किसी आम इंसान की जाते अकदस से निकले हुए नहीं है, ये अमाल हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अकदस से निकले हुए अमल मशवरा है। मशवरा इस फिक्र को लेकर के बैठना अपनी अपनी मस्जिदों में कि मेरे अपनी जात में, मेरे अपने घराने में, मेरे मोहल्ले में, मेरी बस्ती में, और पूरी उम्मत मुस्लिमा में, और पूरी उम्मत मुस्लिमा के रास्ते से पूरी इंसानियत में अल्लाह का दीन कैसे जिंदा हो जाए, इस फिक्र को लेकर के बैठना ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए कि अल्लाह का निजाम ये है कि दुनिया में दो ताकतें चलती है, एक रहमानी ताकत और एक शैतानी ताकत। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो एक जगह बैठ करके फिक्रे कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि दुनिया में बातिल कैसे फैले, दुनिया में औरियानियत कैसे फैले, दुनिया में नंगापन कैसे फैले। एक तरफ ये मेहनत हो रही है और एक तरफ हमारी मस्जिदों में ये मेहनत हो रही है, सोच हो रही है कि दुनिया में इंसानियत कैसे आए, दुनिया में अखलाक कैसे आए, दुनिया में अल्लाह के नबी का कलमा कैसे बुलंद हो, अल्लाह के नबी की सुन्नतें कैसे जिंदा हो। अब एक तरफ से ये सोच चल रही है, उधर से ये सोच चल रही है, और अल्लाह का निजाम ऐसा है, अल्लाह का निजाम ऐसा है, हक के साथ अल्लाह की ताईद है। जब मैदान में आएगा जाल हक वज़हक अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, फरमाया हक आया बातिल गया, और बातिल तो है ही जाने के लिए, बातिल तो है ही जाने के लिए। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, ये बहुत बड़ी ताकत है, और इसमें इस बात की फिक्र है हर मुसलमान के दिलो दिमाग पर, अल्लाह के नबी वाला फिक्र आ जाए। तो हम हर मस्जिद के अंदर इस फिक्र को लेकर के बैठना, अपने घर में अपने कारोबार में इस फिक्र को लेकर के जाना। दूसरा काम हमें यह करना है, अब जो हमने मस्जिद के रास्ते से जो फिक्र और जो मशवरा किया है उसको वजूद में लाने के लिए अपनी मस्जिद के अतराफ में जितने मुसलमानों के मकानात है, एक एक मुसलमान को टारगेट बनाकर, एक एक घर को टारगेट बनाकर, अपने औकात को फारिग करके उनकी खुशामद दिल को साफ करते हुए उसको अल्लाह से जोड़ने की मेहनत करना, और कोशिश करें घरों में बैठकर
جو ہے اطمینان کے ساتھ ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، یہ چھ صفات ہے، ان چھ صفات کو فضائل کی روشنی میں بیان کرنا تاکہ اس کے راستے سے ہمارے اپنے دلوں میں بھی بات اترے، اس کے اندر بھی دائیہ پیدا ہو، وہ فکر مند بن جائے کہ بھائی اگر میری زندگی اس طرح گزرتی رہی تو میرا کیا بنے گا. اس کے لیے 2.5 گھنٹے کے راستے سے اپنی مسجد کے اطراف میں 100% مسلمانوں پر محنت کرنا، اور 2.5 گھنٹے کے راستے سے محنت کرنا، یہ گویا جتنا اپنی بستیوں میں بگاڑ ہے ان بگاڑ کے دور کرنے کا یہ ذریعہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی، اس تربیت میں اللہ کی طرف سے فضائل کے لائن کا علم آیا. اس فضائل کے لائن کے علم کے راستے سے دلوں میں داعیہ پیدا ہوگا عمل پر کھڑا ہونے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے عمل کے داعیے کے ابھارنے کے لیے فضائل کی ترغیب دیتے تھے جس کے راستے سے وہ عمل آسان ہو جاتا تھا. اس لیے اپنی مسجد کی تعلیم میں پابندی کے ساتھ میں بیٹھنا، طالب بن کر کے بیٹھنا، ہمارے اندر جتنے رذائل ہیں، جتنی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اس کے راستے سے اللہ دور کر دیں گے. اپنے گھر کی تعلیم کو زندہ کرنا، گھر کی تعلیم کے راستے سے گھر کے اندر عبادت کا ماحول، دعوت کا ماحول، سادگی کا ماحول، حسن معاشرت کا ماحول، بچوں کی تربیت کا ماحول، یہ ساری چیزیں قابو میں آئے گی. اور دیکھو ہم سب بارہا کہتے ہیں مردوں کے بنسبت عورتیں زیادہ ہے، عورتوں کے بنسبت بچے زیادہ ہے، اس لیے ہمیں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے اوپر اور بچوں کے اوپر بھی محنت کرنا ہے. اور اس کا آسان راستہ یہ ہے اپنے گھر میں تعلیم کو محبت اور اکرام کے ساتھ میں زندہ کرنا. مولانا انعام الحسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے بے دینی کے جتنے سوراخ گھر میں ہیں ان کے بند کرنے کا آسان راستہ یہ فضائل اعمال کی تعلیم ہے. اس کے اور عورتوں میں تو اللہ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہے، بہت جلدی اثر لیتی ہے، جو بات پکڑتی ہے چھوڑتی نہیں ہے، منوانے کی صفات ہے، یہ ساری چیزیں ان عورتوں کے اندر ہوتی ہے، اس راستے سے آسان ہو جائے گی. اس کے لیے پورا مجمع یہ طے کرے ہمیں اپنے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کو زندہ کرنا، کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ میں 2 گشتوں کی پابندی کرنا، اپنی مسجد کا قربانی کے ساتھ 2 نمازوں کے درمیان کے وقت کو فارغ کر کے دوسرے گشت کا جو بھی مشورے سے طے ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے لیکن وہاں کام نہیں ہو رہا ہے تو حکمت سے، حکمت عملی سے، حسن تدبیر سے ایسی کوشش کرنا کہ ان محلوں میں اللہ کے دین کی محنت زندہ ہو جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے محلے اللہ کی حفاظت میں آ جائے. اس لیے کہ جہاں اللہ کے دین کی محنت ہوتی ہے وہ محلے اور وہ علاقے اللہ کی حفاظت میں آ جاتے. ہم سب چاہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے محلے اور بستی اللہ کی حفاظت میں آ جائے. اس کے لیے راستہ یہ ہے ان علاقوں میں جو ہے دوسرے گش کے ذریعے سے وہاں اللہ کے دین کی محنت کو زندہ کرنا، کریں گے بھائی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ میں ماہانہ 3 دن اس طریقے سے لگانا کہ جس کے اندر ہمارا وقت بھی پورا ہو اور اعمال بھی پورے ہو. اس لیے کہ تربیت جو ہوتی ہے نکلنے کے زمانے میں اعمال کی پابندی کے راستے سے ہوتی ہے، اس لیے اوقات بھی پورے ہونے چاہیے، اعمال بھی پورے ہو جس میں ہمارے ساتھ نکلنے والے ساتھیوں کی تربیت ہو، جس علاقے میں جائے وہاں نقد جماعتیں نکالنے کی کوشش کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں مسجد وار جماعت بنی ہوئی نہیں ہے تو بنانے کی کوشش کرے، اور بنی ہوئی ہے تو جس سطح پر وہاں سے آگے بڑھائے، دین بھر میں محنت کرنا، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ سے مانگنا، اور اسی ہدایت کی روشنی میں آنے والی جماعتوں کی کارگزاری لینا، اور واپسی کا کام سمجھانا کہ موت تک ہمیں اس کام کو کیسے کرنا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب.
جماعت میں جانے والے احباب یہاں پر رسی کے اندر آ جاؤ، جہاں کہیں پر بھی ہو تو یہاں پر آ جاؤ ذرا. جماعت میں جانے والے احباب ان کے لیے رسی کے اندر جگہ رکھی گئی ماشاءاللہ، آ جاؤ آ جاؤ. اور جو حضرات باہر کھڑے